शाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। यं प्राव्यजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मे तया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुप। तवैवास्मि न जीवामि त्वया राधे पङ्गय मां शरणं। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै चित्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणाय। तो इनको पानी नहीं, तो पहले पानी नहीं पिए, ठीक है। श्रावण मास का राधा कृष्ण जुगल की का झूलन चल रहा है, झूलन महोत्सव। श्रावण महीने भर ये चलता है, रिमझिम वर्षा बीच बीच में होती है, कभी मूसलाधार। रिमझिम वातावरण में और ठंडी हवा हो, चारों तरफ हरियाली हो, चारों तरफ में कोयल बोल रही हो, मैं को लेकर के ये मयूर नाच रहे हो, ऐसा दृश्य वृंदावन में रहता है। विशेषकर के इसी महीने में बेटियां भी आती हैं और पूरा कप खाने आते हैं। शरद पूर्णिमा के समय ये पूर्णिमा जो आएगी रक्षक, हाँ तो वो भी आने वाली। ये सब ब्रज के विशेष त्योहार हैं। चारों तरफ में ब्रज में हरियाली छाई है, चारों तरफ में मल्हार राग हो रहे होंगे। वृंदावन अनुपम सजा हुआ है, चारों तरफ में रास लीलाएं सब हो रही हैं, जगह जगह भागवत का प्रवचन हो रहा है, जगह जगह में चारों तरफ में उत्सव मन रहे होंगे। सबके मन में उमंग होगी, किसी को सुख तो नहीं है, किंतु ब्रज के ये भाव जिसके हृदय में हैं, वो अपने समस्त दुखों को कष्टों को भूलकर और अपने हृदय में इन भावों को ला करके भजन करते हैं और बड़े उमंग से। अभी एक कीर्तन इन लोगों ने गाया, मनरो लागो ना सखीरी श्याम। हमको ये याद आ गई आज 40 वर्ष पहले की बात। गुरु महाराज जी के साथ हम लोग बिहार में दुमका में सहरसा जो सुना है तुम गया है, तो हम लोग गुरु जी के साथ में बैलगाड़ी पर चढ़ करके, और कोई साधन नहीं, तो कुछ लोग 15-20 ब्रह्मचारी पैदल चल रहे हैं और गुरु जी मैं और दो चार आदमी हम लोग जा रहे थे नदी को पार करके बैलगाड़ी। कुछ स्त्रियां काम करती हुई खेतों में और जा रहे हैं। हाँ, अब हम कर रहे हैं, इधर दिमाग जाएगा, हम उठा करके यहाँ से कर देंगे जाओ। हमारी चारों तरफ में बड़ी पैनी नजर होती है, गांव वाली महिलाएं गा रही थी, कुछ कीर्तन गाना और धान रोप रही थी या कोई काम कर रही थी। गुरुजी ने हमसे पूछा ये क्या गा रही, हमारे समझ में कुछ नहीं आया ये क्या गा रही। हिंदी में गा रही हैं, किंतु उधर की भोजपुरी या उधर की जो भाषा होती है वैसे गा रही थी। ब्रज का कोई कीर्तन कर रही थी और हमारे समझ में, तो क्या हिंदी जानता है तुमको ये नहीं समझ में आता कि ये क्या गा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये कीर्तन सुना, मन रो लागे ना श्याम, क्या इसका तात्पर्य है? इसका इन लोगों का आप लोगों ने स्वर सम देखा ये कैसे गा रहे हैं, या उसके भीतर में प्रवेश करने की चेष्टा की गई? ये ब्रज का विरही गीत है। कृष्ण के विरह में गोपियों की जो अंतरदशा है उसका उसमें वर्णन किया, बड़ा मार्मिक रूप में। किंतु जो गाने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, किसी के हृदय में रेखा पात नहीं है। वहां पर गुरु जी ने उस कीर्तन का इतना सुंदर अर्थ किया, हमको बड़ी लज्जा आई और आनंद भी हुआ कि गुरु जी किसी भी विषय के एकदम अंतरतम में कैसे प्रवेश कर जाते हैं, उनके अंतिम अंतर के भावों को ग्रहण करते हैं। कीर्तन के ऊपरी स्वर लहरी पर मत जाओ, कहां जाओ, उसके अंतरतम जो भाव है, निगूढ़ भाव है, उस पर जाने का चेष्टा। यह सब भजन है, जब तक भीतर में प्रवेश करने की हम चेष्टा नहीं करेंगे। किसी भी कीर्तन पर भक्त विनोद ठाकुर इत्यादि के द्वारा लिखे गए हैं, नरोत्तम ठाकुर के द्वारा लिखे गए हैं, वो कौन जो रामचंद्र जी के गोविंद दास जी के लिखे गए हैं, प्रेम दास के द्वारा लिखे हैं, वैष्णवी पद गुरु जी के द्वारा लिखे गए हैं, उसके गंभीर एकदम अर्थ में प्रवेश की चेष्टा करो। जो भजन नहीं करने वाले हैं वो तो भीतर नहीं जाएंगे। अंततः भजन करने वाले की जो इच्छा है उसके भीतर में प्रवेश करो। यदि भीतर में नहीं जाओगे भजन, ऊपर के आचरण से भक्ति कम होगी, भक्ति की सिद्धि नहीं। गुरु वैष्णव के जो विचार हैं, उनके जो गीति इत्यादि है, उनके जो दार्शनिक विचार हैं, उपासना मार्ग के विचार हैं, उनको समझने की चेष्टा करें, ये चित्त को एकाग्र करें। अब हम इधर कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो उधर देख रहे हैं, वो लाख जन्मों में भी नहीं सुन पाएंगे। चित्त को एकाग्र करके अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करें। मैं ये जानता हूं कि लाखों आदमियों में से कोई एक आदमी भजन परायण होते हैं, विरले हजारों हजारों में से मनुष्यानां बात ठीक है, किंतु गुरु वैष्णव का हृदय ऐसा होता है, चाहते हैं कि सबको हम लेकर के चलें, सबके हृदय में उन बातों को हम प्रवेश करा दें, और जैसे मैं समझता हूँ ऐसे लोग समझ करके भजन में प्रवेश करें, वो चाहता। इसके लिए कभी कभी उनका जो प्रेम है कभी कभी झुझलाहट में भी परिवर्तित हो जाती है, साधारण लोग समझ नहीं पाते। इसलिए उसके अंदर में प्रवेश कर उन चीजों को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि मठ में आकर मठवासी त्यागी लोग या गृहस्थ भक्त लोग सुनने के लिए, यदि भीतर में नहीं प्रवेश करके उनके भीतरी आचार और विचार को ग्रहण नहीं किया, तो वो लोग ग्राम्य कथा सुनने और कहने के लिए बाध्य हैं, उनको कोई भी कोई सहायता नहीं कर सकता। और जिनको भीतरी विचार लेना है लेते हैं, उनको फुर्सत नहीं है विचार भीतरी विचारों से जो ये किसी के लिए कोई दोष देखे त्रुटि देखे संसार। जब हम लोग मठ में आए, मठ में करी करी ऐसे ही आदमियों को देखा, कोई दूसरे का छिद्र नहीं देखता था, कोई उनकी आलोचना नहीं करता था, ये कैसे बुरे हैं, क्या बुरे हैं, क्या करते हैं। देखो, भक्ति के लिए एक चीज विचारणीय है, विचारणीय ये है, भक्ति में दो चीजें हैं, एक है अनुकूल ग्रहण और एक है प्रतिकूल त्याग। भक्ति में कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रतिकूल को अवश्य त्यागना होता है, अवश्य में, किंतु ये भी जरूरी है कि केवल त्यागना ही भक्ति नहीं है। प्रतिकूल को हमने सब प्रकार से त्याग कर दिया, प्रतिकूल में बदलाया गया स्त्री संगी, एक असाधु, कृष्णा भक्त आ, जितनी भी ये चीजें हैं प्रतिकूल चीजें, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह इत्यादि का त्याग, स्त्रियों में अवैध आसक्ति, मायावादी और भक्ति विरोधी जो लोग हैं या विषय हैं इनका संग त्याग, ये जरूरी है, ये करना होगा। किंतु ये संपूर्ण रूप में 16 आना 100% में 100% कोई कर करके भी भक्ति आएगी, कोई जरूरी, ये कुछ ये करेंगे जो कुछ अनुकूलता कर देंगे, बस अधिक नहीं कर। कृष्ण की सेवा की जो वासना है, हरि गुरु वैष्णव की सेवा करने की जो वासना है, ये असल में भक्ति है, ये अनुकूल चीज है। देखो जो आत्मसमर्पण से भी भक्ति नहीं आरंभ हुई, ये उसके लिए प्लेटफॉर्म हुआ, जो पहले स्टेज की जो आत्मसमर्पण है, भक्ति के अंत वाला नहीं, आत्मनिवेदन नहीं, इसमें भी अंतर है। तो यदि कृष्ण सेवा माने हरि गुरु वैष्णव सेवा की वासना नहीं आई, वासना माने उनकी सेवा करने की अभिलाषा हमारे हृदय में नहीं आई, और लाख कोई बैरागी हो नंगे भी डोले, भले ही हवा भी पान न करे, भक्ति हो जाएगी? ये भक्ति नहीं होगी। कुछ अनुकूलता कर सकती है, ये हम यदि ऐसा त्याग वैराग्य होगा तो हम 24 घंटा भजन कर सकते, इसी के लिए तो वैराग्य की जरूरत। यदि 24 घंटा हमने भजन नहीं किया तो ये त्याग और वैराग्य का कोई भी मूल्य नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं, मायावादी हैं और लोग हैं, जो विषयों को संपूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं, किंतु हरि गुरु वैष्णव की सेवा नहीं कर पाते और हरिनाम नहीं करते, भगवान में प्रीति का या गुरु के चरण में, वैष्णव के चरणों में प्रीति का भाव, उन लोगों की दृष्टि में संसार में कोई गुरु या वैष्णव है ही नहीं है जिसकी वो सेवा कर सके, जिनकी बात मान सके, उनमें यही दोष हो जाता है। इसलिए ये सब दोष ना आने पाए, इसलिए कृष्ण सेवा माने हरि गुरु वैष्णव की सेवा की वासना को निरंतर बढ़ाने की चेष्टा हम लोगों को करनी चाहिए। कैसे बढ़े? इसके लिए जितने परिमाण में बढ़ती जाएगी, अपने आप स्वाभाविक वैराग्य, तत्व ज्ञान सब अपने आप आ जाएंगे। क्या है वो? हाँ, श्लोक क्या है? श्रीमद् भागवत के पहले ये बतलाया गया, श्रीमद् भागवत में पहले या दूसरे ये चैप्टर में है, दूसरा चैप्टर श्रीमद् भागवत का सार है, ये समझो, उसमें सब कुछ उसमें आ गया। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय को मनोनिवेश पूर्वक उसको पढ़ो, उसमें श्रीमद् भागवत पूरा आ गया, उसी की व्याख्या और सब है, ऐसा समझो। उसमें क्या नहीं आया है?
सब कुछ आ गया, वहाँ आ गया सवई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रोखे अहितुक्य अप्रतिहता ज्यात्मा संप्रति धर्म सुनिश्चित पुंसांग विश्व सेनु कथा सुज नोत्पादय जुदीरते। इसके बाद बदंती तत्विदस्तम जगज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द। इसके बाद में शाश्वतांग पति स्मत्तस्य नित्य सदा नित्यता। इसके बाद में श्रीनवतांग स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तत्थो यद्राणी बुधने सुहित सदा। फिर और है भिद्यते हृदय ग्रंथि संशया कितने सुंदर सुंदर मैंने सारा श्रीमद् भागवत का सिद्धांत खूब अच्छी तरह से पढ़ना। तस्मात फिर वो किया जैसे भगवान का स्मरण। अच्छा उसी में है नष्ट की भक्ति भवति नष्ट नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। बस एक अध्याय में पूरा भागवत पढ़ लो और इसी की व्याख्या सारी भागवत हो जाएगी। दिन रात उसी के में लगे रहो, कोई को छिद्रा निवेशन करने की फुर्सत नहीं मिलेगी, दूसरे का दोष नहीं देखने का मिलेगा समय। दिन रात भक्ति में लगे रहो, इसीलिए मठ मंदिर की स्थापना। कभी कभी मुझे दुख होता है, सवेरे में मैं आरती में नहीं आता, मुझे कष्ट होता है। यहाँ आता था जाता था, अब बैलेंस शरीर का ठीक मुझे नहीं रहता इसलिए मैं नहीं आता। किंतु देखते हैं कि बहुत लोग इसका लाभ उठाते हैं, नहीं आते हैं। यदि भक्ति की जरूरत है भाई, आरती का रोज ठाकुर जी का शिव विग्रह को राधा कृष्ण महाप्रभु गिरिराज गुरु जी को यहाँ देखो, जरूर आओ। यदि भक्ति पानी है तो कोई आलस्य इत्यादि मत करो। अरे जाते हैं हम सवेरे का, हम लोगों ने हमारी गुरु परंपरा से ये नियम किया गया है कि सवेरे हम लोग सभी लोग एक साथ में बैठेंगे और कीर्तन करेंगे दैन्य मूलक प्रतिकूल्यमयी अनुकूल्यमयी ये सब कीर्तन होंगे और उसके अनुसार अपने चरित्र को सुधारेंगे ग्रहण करेंगे। लालसामयी कभी भक्ति होगी, कभी गौर बने सूरधुनि कटे हाराधे हाथ न बोले, ठीक वो भाव लाने की चेष्टा करनी चाहिए। इसको भी जरूर प्रतिदिन नहीं हो तो जरूर दो चार दिन में रिपीटिशन करना। ये कामी हमारा जीवन सदा पापे नहीं, ये कौन लिखा? भक्ति विनोद ठाकुर। वो ये सब भावों को जान करके समझ करके उपलब्धि करके हमारे लिए कि हमारा जीवन सदा पापे रहता नहीं का पुण्य, इसको मिला करके अपने जीवन चरित्र को हम देखें। यदि भजन करना है तो ये सब ले आओ, गोपीनाथ मम निवेदन सुन विषयी दुर्जन सदा कामे रहता नाही का, ये सब चीज को कीर्तन करो, अपने चरित्र को सुधारो, हमारे अंदर में जो जो त्रुटियां हैं उसको लेकर के ठीक किया जाए, तब तो भजन होगा। देखो जैसे थोड़ी सी कुछ बात में खुजलाहट में हमको क्रोध होता है कि नहीं, अपने ऊपर में झुंझलाओ, अपने मन को दंड दो, ये सब विचार हम नहीं कर रहे हैं तो कैसे भजन होगा। गुरु जी के समय में हमने देखा जहां घंटी बजी आरती का, एक तरह से लौतमानंद प्रभु जी दौड़ रहे हैं, एक तरह से जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी स्थूल शरीर लंबे चौड़े 70 वर्ष के उम्र के, वो एक कोई बाबा जी हैं दुबले पतले एकदम, उनकी उम्र हो गई है 70 वर्ष की, वो दौड़े आ रहे हैं
कोई इधर से आ रहे हैं, कोई उधर से आ रहे हैं, सब लोग बैठ खड़े होकर के नरहरी प्रभु थे, गुरु जी थे, ये सब लोग आकर के दर्शन करते। अब वो सब आरती नहीं दिखने मिलती, इसीलिए भजन विरोधी भावनाएं हृदय में आती हैं, हमारा क्रोध बढ़ जाता है, बात बात में हम लड़ते हैं झगड़ते हैं, गुरु का शुद्ध रूप में हम आदेश पालन नहीं कर पाते। गुरु दस्तुर भी बुलाए हैं या शिक्षा गुरु, कदे जाओ कदे जब मैं नहीं आऊंगा, मठ से चला जाऊंगा तो चला जाऊंगा, आऊंगा नहीं। मैंने नहीं समझा कि ये सब कौन भजन के तरीके हैं, यदि इतना भी नहीं है तो ये सब चीजों को सुधारने की हम चेष्टा करें। हमारा हृदय परस्पर बंधुत्व हो, परस्पर गुरु भाइयों के प्रति, दूसरों के प्रति नम्र कोमल और प्रीति युक्त हो। प्रतिदिन नियम के अनुसार में हम कीर्तन में पाठ में, शाम की के कीर्तन में पाठ में प्रवचन में, भले ही कोई दूसरा पाठ कर रहा हो जो हमसे श्रेष्ठ नहीं है तो भी उसमें आ रहा है। इस तरह से हम भजन राज्य में अग्रसर हो सकते हैं। नियमित रूप में भाई मठवासी हो या गृहस्थ भक्त हो, नियमित रूप में संख्या पूर्वक अपना हरिनाम करो। अजय दिन भर काम है, काम को काम न देख करके भगवान की सेवा देखो, हरि गुरु वैष्णव की सेवा देखो, और उतना ही करो जितना तुम समर्थ कर सकते हो, विरोधी भावना न आए निकाले। भगवान की सेवा करने से चित्त प्रसन्न होता है, जय आत्मा स्वयं प्रसिद्धति, चाहे वो सेवा कार्य हो, चाहे हरिनाम हो, हरि कथा श्रवण हो, गुरु जी की सेवा हो, वैष्णव की सेवा हो, इससे चित्त प्रसन्न होता है, जय आत्मा। यदि आत्मा प्रसन्न नहीं होती तो उसके दो कारण हैं, या तो हम विरोधी भाव लेकर के उसको करते हैं, अथवा उस सेवा में ही सेवा भावना नहीं है। इसलिए जितने भी मठ के कार्य हैं उनको यह समझा जाए कि ये घरी गुरु वैष्णव की सेवा है, इस भावना से उसे प्रतिपूर्वक की जाए। क्यों किया जाए? इसलिए भक्ति एक साधारण भक्ति, औपाधिक भक्ति और स्वरूप सिद्धा भक्ति में बहुत अंतर है। जिसको हम साधारण भक्ति के रूप में जानते हैं, भक्ति नहीं है शुद्ध, औपाधिक भक्ति है। स्वरूप सिद्धा भक्ति कुछ निराली होती है, उसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए, उसमें प्रवेश करने की चेष्टा चाहिए। जिसमें स्वरूप सिद्धा भक्ति रत्ती भर भी है उसमें अनन्य भजन आएगा जरूर, चाहे भले ही उसमें कुछ अनर्थ हो, कोई बात नहीं। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भात साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हो। यहाँ पर अनन्य भक्ति माने स्वरूप सिद्धा भक्ति। स्वरूप सिद्धा भक्ति करने पर श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन भजन और कृष्ण की अनन्य, कृष्ण की राधा जी की ब्रज की भक्ति अनन्य रूप में यदि हो, और उसमें कुछ दुराचार भी ऊपर से लक्षित होता है, तो वो भी सच्चरित्र लोगों से, सच्चरित्र मायावादी भजन नहीं करने वाले सच्चरित्र की एकदम तुरंत हो, तब उसे कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ है। इस चीज को समझो। एक आदमी औपाधिक भक्ति, औपाधिक माने दो, आरोप सिद्धा और संग सिद्धा भक्ति कर रहा हो, सच्चरित्र हो, सत्यवादी हो, करुण हो, विनयी हो, दयालु हो, सब कुछ हो, एक तो हो नहीं सकता, असंभव है। तभी मान लेते हैं तर्क के लिए यदि हो, बिना स्वरूप सिद्धा भक्ति के यथार्थ ज्ञान, वैराग्य, नम्रता, दीनता, प्रीति लोगों के प्रति नहीं हो सकता, नहीं हो। यदि थोड़ी बहुत यदि देखने को भी उसमें मिले, और स्वरूप सिद्धा भक्ति करने वाले लोगों में
यदि थोड़ी सी दुराचार या कुछ भक्ति के विपरीत जैसा दिखाई पड़ रहा है, किंतु भक्ति कृष्ण में अनन्य है, तो साधुरी व सम्मंतव्य। यदि ऐसा भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति जो अनन्य भक्ति कर रहा हो और जरा थोड़ा सा क्रोधी हो, तो क्या करना चाहिए? उसको प्रत्याग करना चाहिए? दुधारू गाय की लात की भांति उसको सह ले, तुमको भक्ति हो। अभिराम की चाबुक जरा सह लो, अभिराम गोस्वामी सहने के साथ ही में भक्ति हो जाएगी। इस चीज को समझो। तो इस तरह से ये चीजों को समझो। उनमें कुछ जरा बदसूरत हैं, काले हैं, नीच जाति में जन्मे हैं, कोई भी बात नहीं। जो स्वरूप सिद्धा भक्ति में नहीं है उनमें वो लोग विचार करेंगे इस चीज को। स्वरूप सिद्धा में प्रतिष्ठित व्यक्ति सबका विचार ना करें। तुम लोग की भी इच्छा हो इसमें प्रवेश करें तो मत विचार करो, कोई भी चीज मत विचार करो। विचार करो कि अनन्या भक्ति कैसे हमें हुई। ये अनन्या भक्ति का पहला लक्षण है कि उसमें भजन के प्रति, भजनीय के प्रति प्रीति रहेगी। हरि नाम करने में रुचि, हरि कथा श्रवण करने में रुचि। वैष्णव आने से चित्त प्रसन्न हो जाएगा, गुरु को देखने से चित्त प्रसन्न जिनका हो जाता है, अच्छे हैं उनको आदर करेगा, उनका परिगमन करेगा। परिगमन माने उठ करके उनको जाते समय में उनके पीछे दो पैर चल करके जाएगा, ये अपने आप आएगा। ये सब चीजें कहने की जरूरत नहीं होगी, ये अपने आप चीजें आएंगी। जिसको हरि गुरु वैष्णव को देख करके आनंद नहीं होता है, उनकी सेवा के लिए उनकी चित्त में छटपटाहट नहीं है, मिलने की संग की छटपटाहट नहीं है, तो क्या समझो? बहुत अभी दिल्ली बहुत दूर है, बहुत दूर ना, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी दिखाई पड़ने पर भी। इन चीजों को समझो, इसलिए इन चीजों में प्रीति होना। ये प्रीति ऐसे नहीं होगी सुदुर्लभा, लाखों साधन करने पर भी ऐसी भक्ति। यही कृष्ण सेवा की वासना धीरे धीरे बढ़ करके ऊपर में रुचि तक, आसक्ति तक आती है। तो जिसको ये सब चीजें नहीं है, ये दुख की बात। ये कैसे आएगी? एक तो होता है अपने साधन से, किंतु हजार सहस्त्र साधन करने पर भी सुदुर्लभ। दो चीज है और इसके बाद, या तो भक्त कृपा या भागवत कृपा या भागवत कृपा। भगवान की कृपा से होगा या भगवान की कृपा कोई ऐसे लोग, यदि हम उनके प्रति शरणागत होंगे हम और संपूर्ण रूप से उनके शरणागत हो जाएंगे, हमारी उनकी सेवा की अभिलाषा होगी, तो भगवत कृपा होती है। भगवान चाहते हैं कि ये हमारी सेवा में नियुक्त हों, हम इन पर कृपा करें। हम उनकी कृपा को ले नहीं पाते, वे ललायित रहते हैं कृपा करने के लिए। उनकी कृपा भी तीन चार प्रकार की होती है, हृदय में स्फूर्ति करते, हृदय में उद्दीपन कराते, प्रेरणा देते हैं, और अपने वचन से और अपने दर्शन से, और भक्तों को प्रेरणा देकर के उनके द्वारा कृपा कराएंगे। ये भगवान की कृपा, या तो कृपा ऐसे करेंगे, लकड़ी चावल दाल और ये सब चीजें, चावल दाल तरकारी चूल्हे चक ये सब दे करके, पानी का सब रसोई का पूरी सामग्री दे करके ये बना लो। हमारे पास सामग्रियां नहीं है, या तो सामग्री दे करके करें, या पकी हुई दाल भात तरकारी प्रसाद या पूरी पकवान रसगुल्ले इत्यादि दे देंगे एक साथ, परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप प्रेम देंगे। ये दो प्रकार से भगवान जो वैष्णव का संग दिला देते हैं और साधन हमारे लिए ठीक कर देते हैं और भक्ति के जितने विरोधी चीजें हैं उनको भी दूर भगा देते हैं और रोग को भी नहीं रहने देते, यही तो अनुकूल शुद्ध गुरु को भी दे देते हैं, ये क्या चीजें हैं? ये साधन की सामग्रियां हमारे लिए, ये बिना भगवत कृपा के नहीं होगी। हम चाहते हैं कभी 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 सोचते हैं हम लोग भजन कर लेंगे, अभी चलो गोवर्धन में भजन कर लें, और वहां पर गए दो दिन के बाद में काला बुखार हो गया, पेट खराब हो गया भजन, अस्पताल में भर्ती हो, भजन कर रहे हैं मन चंचल, आकर के किसी सोए थे और रात में दो करके दो लठिया दे दी, हाथ पैर तोड़ दिया। एक वहां नंदगांव में रूप गोस्वामी के कदम पटेर में भजन का सबसे बड़ा स्थल, सबसे ऊंचा, वहां पर भजन करने गए मामू एक जन परम विरक्त